आरवी अंशु को नहलाते हुए शान के बारे में सोच रही थी, जैसे आज उसने उसे देखा था, उसके इतने करीब थी। ये एहसास बहुत अलग से थे उसके लिए। फिर उसकी नज़रें अंशु पर चली गईं और उसने मन ही मन कहा, आप इतनी प्यारी हैं तो आपकी मम्मा भी बहुत खूबसूरत होंगी। मिस्टर मल्होत्रा भी बहुत अच्छे हैं, इतने हैंडसम हैं, किसी भी लड़की के लिए उनके चार्म से बचना नामुमकिन है। वो आज भी आपकी मम्मा से प्यार करते हैं, तो उनके साथ क्यों नहीं है? आपको आपकी मम्मा से दूर क्यों रखा है उन्होंने? कि आपकी मम्मा ने उन्हें धोखा दिया है? इतने हैंडसम दिखते हैं ये तो, सबके बताने के हिसाब से दिल के भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई लड़की इन्हें छोड़ दे? ऐसे ही जीवन साथी की तलाश होती है हर लड़की को, फिर वो कौन होगी जिसने इन्हें ठुकरा दिया, जबकि इनके साथ उसकी एक बेटी भी है? क्या उसे ये पता होगा या मिस्टर मल्होत्रा ने उन्हें धोखे में रखा हुआ है? क्या वो आपको आपकी माँ से चुरा कर यहाँ ले आए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ, कौन सही है और कौन गलत। आरवी बुरी तरह परेशान हो गई थी। उसने अपना सर झटका और अंशु को नहलाकर टावल लपेटकर बाहर ले गई। शान अब रूम से जा चुका था। आरवी ने उसे कपड़े पहनाकर रेडी कर दिया, फिर उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर निकल गई। शान लिविंग रूम में खड़ा था और किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो जैसे ही फ़ोन काटकर पलटा, उसकी नज़रें सीढ़ियों से उतरती आरवी और उसके साथ आ रही अंशु पर चली गईं। आरवी ने आज नारंगी कलर का सूट पहना हुआ था, जिस पर गले पर पिंक कलर का बारीक थ्रेडवर्क था। बाकी पूरा सूट प्लेन था, नीचे से चूड़ीदार और कंधे पर एक तरफ पिनअप किया हुआ दुपट्टा, जो उसके चलते हुए हवा में लहरा रहा था। मांग में हल्का सा सिंदूर, कानों में झुमके, गालों पर झूलती करली लटे जो अपने आप उसकी कमर पर नागिन सी बलखाती चोटी से बाहर निकल आई थी। हाथ में दो दो कड़े जो बड़ी माँ ने उसे दिए थे और पैरों में जुत्ती। एकदम सिंपल थी वो, फिर भी कयामत ढा रही थी। और उसका हाथ थामे चली आ रही थी अंशिका, नारंगी कट स्लीव टॉप और ब्लू जीन्स। करली बालों को बड़े सलीके से पोनीटेल में बांधा हुआ था, फिर भी छोटे छोटे बाल उसके माथे पर फैले हुए थे। गले में माता रानी का लोकेट और पैरों में छोटी छोटी सैंडल। वो बिल्कुल आरवी की कार्बन कॉपी लग रही थी। दोनों के लबों पर प्यारी सी मुस्कान फैली हुई थी और अंश आरवी से बात करते हुए नीचे आ रही थी। शान एक बार फिर उन्हें देखकर सोच में पड़ गया। कोई रिश्ता ना होकर भी आज उनका रिश्ता कितना गहरा हो गया था। एक महीने पहले तक आरवी का अंशु से कोई रिश्ता तक नहीं था, पर अंशु को जब जब वो उसके साथ देखता था, उसके दिल में बस यही ख्याल आता था कि दोनों सच में माँ बेटी हैं। शान ने उन्हें देखते हुए मन ही मन कहा, अजीब इत्तेफाक है ये भी, तुम आरवी की तरह दिखती हो। ऐसा लगता है जैसे वही तुम्हारी असली माँ है, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, पर ये सच नहीं है। फिर तुम्हारे और उसके बीच इतनी सिमिलैरिटी कैसे है? वो यही सोच रहा था कि आरवी अंशु के साथ उसके पास ही आ गई। उसने शान को खोया हुआ देखा तो उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोली, ब्रेकफास्ट करने चलिए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? शान चौंक कर होश में लौटा और कदम पीछे हटाते हुए बोला, जा ही रहा था। इतना कहकर वो जाने के लिए मुड़ गया तो आरवी अंशु के साथ सुभाष जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बाद सभी ब्रेकफास्ट के लिए इकट्ठे हो गए थे। आरवी ने सबको सर्व किया, फिर खुद भी बैठ गई और अंशु को खाना खिलाने लगी। शान भी खामोशी से खाना खा रहा था। तभी सुभाष जी ने उसे देखकर सवाल किया, हमने सुना है आज आप अंशु के एडमिशन के लिए जाने वाले हैं? जी, कब तक घर पर रखूंगा उन्हें? बाहर तो एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा, फिर अब वो बड़ी हो गई हैं, स्कूल नहीं जाएंगी तो अपनी उम्र के बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगी, शान ने उन्हें देखकर सहजता से जवाब दिया। सुयश जी ने मुस्कुराकर कहा, बड़ी जल्दी ख्याल आ गया आपको इस बात का कि अंशु बड़ी हो रही हैं, उनका एडमिशन करवा देना चाहिए। उन्होंने उसे रुई में लपेटकर झापड़ दे मारा तो शान की जगह अर्पिता जी ने जवाब दिया, हमारी बातें नज़रअंदाज करता था, पर अब आरवी आ गई हैं, उन्हीं ने कहा होगा तभी माने हैं ये। नहीं बड़ी माँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। मेरे कहने पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। शान के कुछ कहते से पहले ही आरवी ने सफाई दे दी तो शान उसको तिरछी नजरों से घूरने लगा। बेचारी आरवी असमंजस में पड़ गई कि अब उसने क्या गलत कर दिया है जो शान गुस्से से उसको घूर रहा था। शान ने उस पर से अपनी नजरें हटा ली और बाकी सबको देखकर गंभीरता से बोला, मैंने किसी के कहने पर कुछ नहीं किया है। मैंने इस बारे में बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। अंशु का एडमिशन होगा, वो पढ़ेगी, पर अभी भी ये बात बाहर नहीं जाएगी कि वो मेरी बेटी है। अच्छा फैसला किया है आपने, अब हमें जरा ये बताइए कि हमारी पोती का एडमिशन किस स्कूल में करवाने जा रहे हैं आप? सुभाष जी ने मुस्कुराकर सवाल किया। सबकी नजरें शान पर टिक गईं। उसने सबको एक नज़र देखा और स्पून उठाते हुए बोला, वही जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की है। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी भी उसी जगह से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करे जहाँ से उसके डैडी ने की थी। हाँ, आज उससे अच्छे कई स्कूल हैं, पर फिर भी मुझे अंशु के लिए वो स्कूल ही सबसे बेहतर लगा। हमने तो आपको पहले ही कहा था कि अंशु का एडमिशन उसी स्कूल में करवा दीजिए। याद है आपने कितनी जिद की थी हमसे कि आपको उस स्कूल में जाना है क्योंकि अर्जुन वहां जाते थे? सुभाष जी ने अतीत में खोते हुए मुस्कुराकर कहा। वहीं उनकी बात सुनकर शान का हाथ हवा में ही रुक गया, भाव एकदम से सख्त हो गए। उसने स्पून नीचे रख दिया और उठ खड़ा हुआ तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। उसने बिना किसी भाव के कहा, मेरी मीटिंग है तो मुझे जाना होगा। इतना कहकर उसने जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। आरवी ने उसे देखा, फिर उसकी प्लेट देखी और परेशान होकर बोली, पर आपने तो खाना ही नहीं खाया। भूख नहीं है मुझे और किसी को मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए, उसने रौबदार आवाज में जवाब दिया और बिना पीछे मुड़कर उसे देखे वहां से चला गया। आरवी हैरान परेशान सी उसको देखने लगी। शान तो चला गया पर आरवी अब भी गेट को देखे जा रही थी। सुभाष जी के साथ बाकी सब भी उसके अचानक चले जाने से उदास और परेशान हो गए थे। आरवी परेशान सी गेट को देख रही थी तो सुभाष जी ने उसे देखकर कहा, आप चिंता मत कीजिए बेटा, वो ऐसे ही हैं, उनके मूड का कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी गुस्से में है इसीलिए ऐसे चले गए। पर वो गुस्सा क्यों हो गए डैड, आरवी ने उन्हें देखकर सवाल कर लिया तो सुभाष जी ने उदास नजरों से उसे देखते हुए कहा, हमने ही अनजाने में उनके जख्म को कुरेद दिया है, वो जख्म जो आज भी नासूर बनकर उन्हें दर्द और तकलीफ देता है, पर वो अपना दर्द किसी को नहीं दिखाते, अपनी हर भावना को अपने गुस्से के पीछे छुपा लेते हैं, अभी भी वही करके गए हैं। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें खुद को संभालना आता है, कुछ देर अकेले रहेंगे तो ठीक हो जाएंगे। ऐसा क्या कह दिया आपने, आपने तो बस स्कूल का जिक्र किया था, फिर उन्हें गुस्सा क्यों आ गया, आरवी अब भी नासमझी से उन्हें देख रही थी। अब की बार जवाब सुयश जी ने दिया, बेटा उस स्कूल से शान की बहुत सी अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं, पर बहुत सी ऐसी यादें भी हैं जो उन्हें दर्द देती हैं। बड़े पापा मुझे इस बारे में जानना है, आरवी ने अपनी इच्छा जाहिर की। अर्पिता जी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है जान लीजिएगा, पर आज नहीं, फिलहाल आप अंशु और शान पर ध्यान दीजिए। आरवी ने हाँ में सर हिला दिया और सब खामोशी से खाना खाने लगे। आरवी अब और भी परेशान हो गई, कुछ और भी नए सवाल उसके जहन में घूमने लगे।
उसने अंशु को खाना खिलाया, फिर उसको सब रिवाइज करवाने लगे। सुयश जी चले गए थे, अर्पिता जी अंशु को देख रही थीं और आरवी सुभाष जी की मालिश करते हुए उसकी रीडिंग सुन रही थी। शान की एक मीटिंग थी तो वो उसी में बिजी था। करीब 9:30 बजे वो फ्री हुआ और घर के लिए निकल गया। आरवी की नज़रें बार बार घड़ी की तरफ ही जा रही थीं। शान का यूं खाना छोड़कर उठना उसे पसंद नहीं आया था, तभी से उसको उसकी फ़िक्र हो रही थी और वो बार बार घड़ी देख रही थी या शायद उसके आने की राह देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी के रुकने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो पल में पहचान गई कि ये शान की ही गाड़ी की आवाज़ है और इसके साथ उसका चेहरा खिल उठा। वो झट से किचन में भाग गई। कुछ देर बाद शान अंदर आया तो सब वहाँ थे पर आरवी नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें गुस्से से छोटी छोटी हो गईं। उसने हल्के तेज़ आवाज़ में उसे पुकारा, आरवी। आवाज़ सुनकर आरवी भाग कर किचन से बाहर आते हुए बोली, मैं यहीं हूँ। आवाज़ सुनकर शान की नज़रें उसकी तरफ घूम गईं। आरवी के हाथ में कुछ था जैसे कोई रोल जो फॉइल पेपर में लिपटा हुआ था। शान ने उड़ती नज़र उस पर डाली फिर हमेशा वाली सख्त आवाज़ में बोला, जल्दी चलो हमें देर हो रही है। बस 2 मिनट, मैं अपना फ़ोन ले लूँ। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। वापस आई तो हाथ में फ़ोन था और दूसरे में वही रोल। उसको ऐसा आता देखकर शान की भौहें सिकुड़ गईं। उसने गुस्से में सवाल किया, सब कुछ हाथ में लेकर चलोगी, बैग नहीं है तुम्हारे पास? उसका सवाल सुनकर आरवी ने झट से जवाब दिया, नहीं, कॉलेज तो पीछे वाला बैग लेकर जाती थी, डांस क्लास सिर्फ फ़ोन लेकर जाती थी और इन दो जगहों के अलावा और कहीं जाती नहीं थी तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। शान कुछ पल उसको घूरता रहा फिर अफसोस से सिर हिलाकर आगे बढ़ गया तो आरवी ने अंशु का हाथ पकड़ा और सबको आने का बोलकर उसके पीछे पीछे चल दी। टू बी कंटिन्यूड।